ये आकाशवाणी है, अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में अब से थोड़ी देर में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसका उद्देश्य पशुओं में खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस रोगों का उन्मूलन करना है। इस कार्यक्रम के तहत 50 करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे। इसे 2024 तक जारी रखा जाएगा और इस पर 12,652 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 तक पशुओं की बीमारी पर नियंत्रण और 2030 तक इसका पूरी तरह उन्मूलन कर देना है। इन दोनों बीमारियों से दुग्ध व्यापार और अन्य पशुधन उत्पाद पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस कार्यक्रम से किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के प्रयासों को बहुत बल मिलेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। प्रधानमंत्री पशु विज्ञान और आरोग्य मेला भी जाएंगे और बाबूगढ़ वीर्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी देश के सभी 687 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यशालाओं का भी साथ ही उद्घाटन करेंगे। ये कार्यशालाएं टीकाकरण और रोग प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान और उत्पादकता विषय पर हो रही हैं। प्रधानमंत्री मथुरा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले मथुरा पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने पशु विज्ञान एवं आरोग्य मेला देखा। भारत ने कहा है कि जीने के मौलिक मानवाधिकार के लिए संकट बने आतंकी गुटों और उन्हें शह देने वालों के खिलाफ संगठित रूप से निर्णायक और सख्त कार्रवाई करने का समय आ गया है। जिनेवा में कल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विदेश मंत्रालय में सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि मानवाधिकार के नाम पर अपना राजनीतिक हित साधने के लिए परिषद के मंच का दुरुपयोग करने वालों पर विश्व समुदाय को नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार का मुद्दा उठा रहे हैं, उन्होंने अपने देश की स्थिति पर चुप्पी साध रखी है। मानवाधिकार परिषद में कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रथम सचिव विमर्श आर्यन ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत विरोधी बयान दिए हैं और कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए जेहाद तक की अपील की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडारू दत्तात्रेय को आज शिमला में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धर्मचंद्र चौधरी ने उन्हें शपथ दिलाई। उन्होंने कलराज मिश्र का स्थान लिया है। कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ 248 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें छोटे सहयोगी दलों के लिए छोड़ देगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मुंबई में कहा कि दोनों प्रमुख विपक्षी दलों के बीच सहमति के आधार पर सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में ये निर्णय किया गया। मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में भीड़ की हिंसा के शिकार लोगों को मुआवजा देने का भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बिहार में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ अभियान आज से शुरू हो रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जन जागरूकता का ये कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत प्रत्येक वार्ड से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक एकत्र की जाएगी और इसके पुनर्चक्रण के लिए स्थानीय निकायों के संग्रह केंद्रों पर भेज दिया जाएगा। राज्य में प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी पहले ही लगाई जा चुकी है। केरल का प्रसिद्ध उत्सव तिरुओणम आज पारंपरिक आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में केरल के लोग 10 दिन के इस फसल उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
मम्मी मैं तैयार हूँ बाजार जाने के लिए। आपने कपड़े का थैला रख लिया है ना?
प्रधानमंत्री जी ने कहा है
इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए, जूट के थैले हो कपड़े के थैले हो, मेरे किसान को मदद करेगा, गरीब विधवा माँ जो सिलाई करती होगी उसको मदद करेगा। यानी हमारा एक छोटा सा निर्णय भी सामान्य मानवीय के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है, हम उस दिशा में काम करें।
क्या आपने रखा है अपने साथ कपड़े का थैला?
सौदशमलव 1 FM गोल्ड पर आप है हमारे साथ मतलब मैं प्रीति और मेरे साथ है
मैं हूँ नसरीन। और बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी सुबह है आज की, क्या कहती हैं आप?
बिल्कुल, और सुबह वैसे भी खूबसूरत हो जाती है जब नसरीन आती है बुधवार के दिन। हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है ना? और साथ ही साथ एक और विशेष बात होती है, वो क्या होती है नसरीन? आज के दिन कोई और भी होते हैं?
हाँ, हमारे साथ एक स्पेशल से गेस्ट होते हैं और हर बार हमारे सुनने वालों के लिए सरप्राइज होता है कि आज कौन हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो जरा इंट्रो करवा दें आप उनका।
बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार है, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका गोल्ड के स्टूडियो में।
धन्यवाद धन्यवाद।
कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो फिर समझ लीजिए सब कुछ अच्छा है। और आजकल तो इतनी समस्याएं आ रही हैं, मतलब देखते देखते अभी जिससे भी बात कर रहे हैं कह रहे हैं सर्दी खांसी हो गई है और फीवर भी आ रहा है, वायरल हो रहा है, फिर इतनी सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाती है ना डॉक्टर साहब, कि हम परेशान हो जाते हैं और इतना अनरेस्ट हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ क्या आ जाती है, सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट हो जाता है ना? हम सोचते हैं कुछ कर ले, अभी कुछ दे देते हैं फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, जो मुझे लगता है कि अगर आप एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो ये नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, ऐसा है कि अभी इस तरह की जो वातावरण में काफी सर्दी खांसी का ज्यादा केस आ रहा है, फिर एंजाइटिस भी हो रहा है, हेडेक, जाड़ा, फिर फीवर, इस तरह की समस्याएं तो आती है, लेकिन इसमें सेल्फ मेडिकेशन करना उचित नहीं है। आप अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें और साथ ही साथ स्वच्छता पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस वेदर में, और खासकर जो है अपना हाथ धोकर जो है कुछ भोजन ग्रहण करना हो जरूर अवश्य हाथ धोएं, और हाथ धोना आवश्यक है।
जी बिल्कुल, और इसी से समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत दिक्कत आ जाती है। अब नसरीन की बात कीजिए, छोटा सा बच्चा है इसका, प्यारा सा बच्चा है ना, और उसको उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है जो मदर्स हमें सुन रहे हैं, तो कैसे ख्याल रखती हो नसरीन वैसे बच्चे का?
बच्ची का ख्याल मैं ऐसे रखती हूँ, सबसे पहली जो मेरी जिंदगी का उसूल है वो सबसे पहला है हाइजीन रहना।
yes.
उसके लिए मतलब कुछ भी कर गुजरना हो, हाइजीन रहना पहली बुनियाद है हेल्दी रहने की। अगर आपने वो मेंटेन किया तो फिर सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं।
क्या बात है, तो हाइजीन की बात कही है।
हाइजीन और सैनिटेशन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और यदि इसको हम मेंटेन रखते हैं तो बहुत सी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, खासकर जितने कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे कि निजात पा सकते हैं।
और इसी से कनेक्टेड फिर डायरिया आ जाता है, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो आपको भी कुछ पूछना है, सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 5301 और गोल्ड टाइप करके हमें लिख करके भेज दीजिए, जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर अरविंद से। हमारे साथ डॉक्टर साहब रहेंगे 1 बजे तक, और मुझे लग रहा है कि एक गाना यहाँ बनता है, क्योंकि जब हम एफ एम गोल्ड की बात करते हैं 100.1 पर, तो गाने साथ साथ होते हैं। तो कौन सा गाना सुनवा रही हो नसरीन?
गाना बड़ा ही रोमांटिक सा है, दिल खुश कर देने वाला गाना है, पहले सुन लेते हैं जरा सा।
चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती। देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं, मैं सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुमसे प्यार करूं तुम समझोगी दीवाना, मैं भी इकरार करूं दीवानों की ये बातें दीवानों आने जानते हैं जलने में क्या मजा है, परवाने जानते हैं तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन मीठी प्यार ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
वाकई गीत बहुत ही प्यारा, जैसे आपने कहा था नसरीन, लवली सॉन्ग। इस गाने को जब भी सुनो ना आप फ्रेश हो जाते हो,
फ्रेश हो जाते हो और हर बार नया लगता है ये गीत, न जाने क्यों क्या बात है इस गाने में। खैर चलिए अब जरा सेहत की बात कर लें।
बिल्कुल, राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, सितंबर का महीना है, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ चल रहा है और हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है और कहते हैं इंसान जैसा खाता है वैसा ही दिखता भी है।
क्या बात है, चलिए डॉक्टर साहब की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो वैसे थोड़ी सी फिलोसफिकल बातें हैं जो नसरीन ने कही है, जो आरजेस करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, ये राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है और इसमें हमें अपने डाइट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। डाइट जो है उसमें सारे कंस्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। एक बैलेंस डाइट में जितना कार्बोहाइड्रेट का इम्पोर्टेंस है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड फाइबर्स, वाटर, ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं बैलेंस डाइट के, ये सारे होने चाहिए। एटलीस्ट 5 प्रोटीन्स तो होने ही चाहिए, इससे आपके बहुत से मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है जो हमारे शरीर में बहुत से एंजाइम्स और इसके बनने में हेल्पफुल होता है।
डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है माया इनक्लेव से, प्रोफेसर ए के टंडन साहब लिख रहे हैं और पूरा अपना उन्होंने डिटेल्स भेजा है कि वो 75 हैं, मतलब शायद उम्र है उनकी 75 और इनका हीमोग्लोबिन है 10.5, एचडीएल 41 है, तो इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कुछ गड़बड़ है इसमें?
एचडीएल 41 है तो नॉट बैड, तो कम से कम 50 से ऊपर रन रहे तो और अच्छा है जी। लेकिन इसमें यदि एचडीएल को इम्प्रूव करना है तो ऑलमंड्स ये अंजीर इसका सेवन कर सकते हैं। 5 आलमंड्स डेली यदि वो भिंगो के लेते हैं तो उससे काफी हद तक उनका एचडीएल जो लेवल है ऊपर आ सकता है।
अच्छा।
साथ ही साथ यदि वो जो उनका कहना है हीमोग्लोबिन जो है मेल में 12 से ऊपर होना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन लो होने से काफी वीकनेस और बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आपको डे टू डे एक्टिविटी में अनुभव होता है।
बिल्कुल, तो हमें लगता है टंडन साहब आपको जवाब मिल गया होगा और हमारे बाकी श्रोता भी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी हो गई होगी कि नॉर्मल कितना है और आपको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। सलीम कुरेशी साहब कह रहे हैं कि नमस्कार आप सभी को और पास टाइम में कॉम्प्लीमेंट से लाइफ हेल्दी हो जाती है। तो बिल्कुल हेल्दी हो जाती है, लेकिन आपको हेल्दी रहना है और इसके लिए आपको अच्छा खाना पीना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो समस्या आती है, क्योंकि बाहर का चटपटा खाना सबको अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद कभी कभी डायरिया की समस्या आ जाती है।
हाँ, तो ऐसा
इसके लिए कुछ बताइए क्या किया जाए।
ऐसा चूंकि होता क्या है कि यदि आप बाहर खाना, हाइजीन यदि मेंटेन नहीं है आपको, जैसे मैंने बताया कि हाइजीन एंड सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी शुद्ध होना चाहिए। पानी भी संक्रमित हो जाता है, खासकर इन दिनों में जब पानी संक्रमित हो जाए तो इससे बैक्टीरियल डिजीज लाइक टाइफाइड और अदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए हम पहले ये ध्यान दें कि हम पानी स्वच्छ लें और साथ ही साथ जब हम कुछ खाने को चीज़ें ग्रहण करते हैं तो पहले आप हैंड वॉश अवश्य करें। हैंड वॉश आप यदि करते हैं रेगुलर, यदि ये हैबिट है तो आप बहुत से वायरल इन्फेक्शन से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्योंकि कुछ जिस चीज़ों का आप टच कर रहे हैं उसमें पता नहीं कि कुछ संक्रमित हो, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है।
अच्छा, जैसे अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए, मतलब जो जितना समय हो हमें डॉक्टर के पास पहुंचने में
डिपेंड करता है,
इमीडिएट क्या होना चाहिए?
जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो सिवियरिटी क्या, कि काफी लूज मोशन है, काफी वाटरी डायरिया है तो कुछ मेडिकेशन जरूरी है और साथ ही ORS बहुत इम्पोर्टेंट है।
ORS भी घर पे नहीं है तो वो नमक, तो पानी, चीनी का घोल,
नींबू और प्लस चीनी और नमक का घोल बना के वो जो अपने घर में भी बना सकते हैं और साथ ही साथ सिकंजी का भी सेवन कर सकते हैं।
कुल मिला के पानी की मात्रा अधिक लेनी चाहिए और कुछ मिला के लेना चाहिए।
पानी की मात्रा समुचित मात्रा में होना चाहिए, 3 से 4 लीटर डेली होना चाहिए
जी। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम आपको सुन रहे हैं, ग्राम नगार कोहरा छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं, झग्गर राम साहू, जामुन देवी साहू और राजू लल्ला साहू लिख रहे हैं कि प्रीति जी नसरीन जी, हम गोल्ड के प्रोग्राम सुन रहे हैं और डॉक्टर अरविंद को सुन रहे हैं, उनकी सलाह हमें अच्छी लग रही है। डॉक्टर साहब
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सुनने वालों का, क्योंकि आप सुनते हैं तभी तो ये जो शो है इतने खूबसूरत बन पाते हैं ना।
क्या बात,
बहुत बहुत धन्यवाद।
हम थोड़ी सी चर्चा सोच रहे थे, क्योंकि आजकल जब भी हम नॉर्मल टेस्ट कराते हैं सबके ना, तो कहते हैं कि अरे वो तो एनेमिक है और ये थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो मैं सोच रही थी इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन नसरीन कह रही थी कि आप बहुत पूछती हैं, आप रहती हैं तो हम अच्छे से पूछ नहीं पाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ नसरीन को दे देते हैं, एक प्यारा सा गाना बजाते हैं, फिर नसरीन के अंदर जो सवाल चल रहे हैं वो आपसे जरूर पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ 1 बजे तक हैं, आप अगर मैसेज करना चाहते हैं तो 5301 पर गोल टाइप करके हमें भेज दीजिए, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए।
किसके दामन जाके साहब से मिलूंगा।
कोई खास बात?
बोलूंगा ईएसआई का फायदा मुझे भी चाहिए।
अच्छा,
पता नहीं तुम्हें ईएसआई का अंशदान कम हो गया है।
हैं? तो सुविधाएं भी कम हुई होंगी?
बिल्कुल नहीं, सभी वही की वही हैं।
अरे वाह।
जी हाँ, नियोक्ताओं के लिए अंशदान दर को 4.75 से घटाकर 3.25 और कर्मचारियों के लिए 1.75 से घटाकर 0.75% कर दिया गया है। कम अंशदान में मिलेगा वही लाभ। ईएसआई योजना से जुड़े आज।
एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप, नसरीन है आपके साथ और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद, जो कि हमें बहुत कीमती जानकारी दे रहे हैं अपने तजुर्बे से। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अक्सर जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है आजकल देखने में, वो आती है कि कहा जाता है हर एक इंसान को वाइटामिन डी की कमी मौजूद होती है उसके शरीर में, तो उसके क्या रीजंस होते हैं? जैसे अगर नॉर्मल हम बात करें तो सब ये कहते हैं कि सुबह सुबह की जो धूप है वो विटामिन डी उससे मिलता है तो वो लेनी चाहिए, तो क्या वाकई में ये होता है कि वो जो धूप की वजह से, धूप के संपर्क में ना जाने की वजह से वो विटामिन डी की कमी हो जाती है?
हाँ, देखिए, हमारा डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट है।
जी,
डाइट जो कि कुछ विटामिन डी प्रोवाइड करती है।
जी, जी,
उसे लेना आवश्यक है। साथ ही धूप, सन एक्सपोजर जो बैक में यदि हो
जी, जी,
तो खासकर अर्ली जो होता है अर्ली
जी, जी,
मॉर्निंग में, तो
में,
वो
सूरज
वो ज्यादा
निकलने के फौरन बाद जो बहुत नरम सी
तो उसमें जो है कुछ मेलानिन पिगमेंट जो बनाते हैं जो उसमें विटामिन डी का सिंथेसिस होता है।
अच्छा,
हाँ, क्योंकि ये 125 डाई हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल होता है
जी, जी,
तो इसका जो है सन एक्सपोजर से ही हो सकता है। साथ ही विटामिन डी का जो हेल्प हमारे बॉडी में है तो वो मसल के कॉन्ट्रेक्शन में, नर्वस सिस्टम में या बोन का कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है ये।
अच्छा,
विटामिन डी तो इसका सेवन बहुत जरूरी है। यदि इसकी कमी बहुत लोगों में देखी जाती है तो इसमें काफी सिम्टम्स ही होते हैं, जैसे मसल एक होता है, मसल पेन होता
जी,
है, बॉडी एक होता है
जी, जी,
और काफी लगता है बोन टूटता हुआ
लगता है,
अनईजी फील होता है और इसमें स्फूर्ति नहीं रह जाती है। तो इस तरह की समस्याएं बहुत में देखी गई है
जी, जी।
तो इसके लिए हम जब विटामिन डी का जब टेस्ट कराते हैं तो वो काफी कम मिलता है। नॉर्मली ये 70-75 से ऊपर होना चाहिए।
अच्छा,
हाँ, तो इसलिए हमें ऊपर से सप्लीमेंट देना पड़ता है और जी फिर सप्लीमेंट देके उसका नॉर्मल लेवल को ये ठीक किया जाता है।
जिनकी बॉडी में ये विटामिन डी कम हो जाता है उनके लिए सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। अच्छा, फिर ऐसी कोशिश की जाए कि इस चीज की कमी हो ही ना, तो उसके लिए प्रॉपर क्या डाइट है एग्जैक्टली?
जैसे नट्स वगैरह में जो है ज्यादा मिलता है, प्लस
जी, जी,
जितने विटामिन्स हैं खासकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें विटामिन डी की मात्रा काफी होती है, तो उनका सेवन करना चाहिए, है ना? क्योंकि आजकल बहुत लोग को सब्जियां, हरी सब्जियां अच्छी नहीं लगती है,
बिल्कुल नहीं लगती,
तो उसके कारण भी ये कमी देखी गई है। खासकर बच्चों को आजकल हरी साग सब्जी अच्छी नहीं लगती है, उनको
फास्ट फूड
ज्यादा अच्छा लगता है,
जी,
तो फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, हरी साग सब्जियों पर जाना चाहिए, फ्रूट्स का सेवन अवश्य करना चाहिए डेली, इससे आपको इन चीजों से काफी हेल्प मिल सकता है
जी। तो ये जो तमाम परेशानियां हैं, पहला तो हुआ कि डाइट, प्रॉपर डाइट लें, जो जो चीजें हमारी बॉडी को चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो सारी लें, और उसके अलावा जो सुबह की जो धूप आपने बताई उसमें बैठना बहुत लाजिम है जी।
और अभी का जो लाइफ स्टाइल भी हो गया काफी, एसी में रहना इधर उधर, है ना, तो
जी, जी,
सब जगह एसी, घर में एसी है, बाहर जब गाड़ी में आप जाते हैं तो एसी,
तो
हर जगह एयर कंडीशन में है, तो आप उससे कांटेक्ट ही नहीं मिल पाता है, तो आप में ज्यादा ये देखी गई है कमी।
हाँ, ये एक बहुत मुझे लगता है अहम वजह होती है उस चीज की, क्योंकि आजकल बॉडी इस तरह की हो गई, हमने बच्चों को भी इस तरह का बनाया हुआ है कि जो स्कूल है वहां भी एसी होता है, बस में जाते हैं वहां भी एसी होता है, तो उन्हें मुझे लगता है वो जो गर्माइश जो मिलनी चाहिए प्रॉपर वो मिल नहीं पाती और उनकी बॉडी फिर वैसे ही उसी तरह की हो जाती है, उन्हें आदत नहीं होती है बच्चों को शायद वगैरह में जाने की, और खास तौर से, और पेरेंट्स भी कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि अगर बच्चे जरा सा भी धूप में जाएं तो वो उन्हें मना करते हैं कि नहीं, धूप में ना खेलो, ऐसा ना करो, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को ये सब चीजें अलाउ करनी चाहिए।
हाँ,
है ना,
इसका सेवन कुछ करना चाहिए, धूप का सेवन,
जरा धूप में खेलें, धूल मिट्टी के कांटेक्ट में जाएं, तो ये सब चीजें नेचुरल होती हैं
जी।
तो डॉक्टर साहब, एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद हमारे लिसनर्स हैं उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे।
थैंक यू।
मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दाव तू है हार जीत मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। बोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना, अपनी वो कहानी जो आ जाने हो के बन गई फसाना। पता नहीं कौन हूँ मैं, क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना, अपनी वो कहानी जो आ जाने हो के बन गई फसाना। जीवन क्या है तमाशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन मेरा मन तेरा।
जी बड़ा ही खूबसूरत ये गीत आपने सुना। और डॉक्टर साहब एक सवाल है हमारे पास, प्रोफेसर ए के टंडन माया इंक्लेव से लिखते हैं, ये कहते हैं कि क्या चाय कॉफी पीने से एचबी जो है वो लो हो जाता है?
नहीं ऐसा नहीं है, चाय कॉफी से उसे एचबी का कोई ज्यादा ये नहीं है। एचबी जो है अन्य कारणों से होता है, जैसे कुछ वर्म इन्फेस्टेशन हमारे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, वर्म इन्फेस्टेशन यदि हुआ तो उससे जो है भी एचबी कम हो जाता है।
ये बताइए ये इन्फेक्ट क्या कहा आपने?
वर्म इन्फेस्टेशन, अच्छा, कीड़े, कीड़े का कीड़े हो जाना।
अच्छा,
हाँ, यदि आपके पेट में कीड़े हैं तो उन्हों उससे उसके कारण भी एचबी आपका लो हो सकता है।
अच्छा,
जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जिसको माइक्रोसिटिक माइक्रोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया के कई टाइप्स होते हैं
जी। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा कि शरीर में कोई कीड़े हैं मौजूद हैं, उसके क्या सिम्टम्स?
उसके लिए एक स्टूल टेस्ट नॉर्मली कराते हैं।
अच्छा,
स्टूल टेस्ट जिसमें कि भूख ना लगना जो बहुत कॉमन है, भूख ना लगना प्लस आपको वीकनेस होना, कमजोरी होना, ये साधारण समस्याएं होती है। तो इससे बचने के लिए एक छोटा सा स्टूल टेस्ट कराना होता है, जिससे आपको पता चल जाता है।
जैसे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी में, तो ऑफ कोर्स जो बॉडी है वो इंडिकेट करना शुरू कर देती है कि ये चीजें हैं। तो कीड़े जो पेट में हो जाते हैं, उसके हवाले से आपने कहा कि भूख नहीं लगती है, और ये बच्चों के साथ भी हो जाते हैं? बच्चों में भी?
हाँ, ये बहुत कॉमन है, बच्चों में भी काफी कॉमन है, बड़ों में भी होता है।
अच्छा,
और इसका फिर यदि हम समुचित इलाज कर देते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है,
ये खत्म हो जाता है। अच्छा, तो इसका
इससे एनीमिया भी ठीक हो जाएगा, उसको वीकनेस सारे खत्म हो जाते हैं।
तो इसका जो चाय और कॉफी है, इसका कोई
इससे कोई रिलेशन नहीं है एचबी का जी। और हमारे बच्चों में भी 13-14 से होना चाहिए ऊपर एचबी।
अच्छा,
और एडल्ट में भी 12 से ऊपर होना चाहिए, 12 ग्राम पर डीएल, 12 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए।
अच्छा, तो और यदि प्रॉपर रेशो है वो 12 बड़ों में
11-10 से, खासकर हिंदुस्तान में यदि महिलाओं में थोड़ा कम होता है तो 10-11 से कम होने से फिर वीकनेस शुरू हो जाता है। 10 से कम होने पर,
मतलब 11 है तो काम चल जाएगा, लेकिन
11 में काम चल जाता
होना चाहिए, 12 तक होना चाहिए,
12 से ऊपर होना चाहिए।
इसके अलावा कौन से वो सुपर फूड होते हैं जो कि जो लोग एनेमिक होते हैं उनको बहुत जल्दी रिकवर करने में मदद करते हैं?
इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और साग जो होता है
जी,
साग बहुत हेल्पफुल होता है।
अच्छा,
पोमग्रेनेट कर जो आप जूस लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ जितना भी हरी सब्जियां है उसमें आपको ये हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, उसे डाइट पर ज्यादा ध्यान देना होता है और फ्रूट्स भी इसमें हेल्पफुल होता है
जी।
हाँ,
तो जितनी भी चीजें हैं जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, ये सब अपने खाने में अगर शामिल करें तो मुझे लगता है इस तरह की कोई शायद जो प्रॉब्लम्स है वो मतलब फेस ही
रेगुलर यदि बैलेंस डाइट के ऊपर आप ध्यान दें तो इसमें जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो इम्पोर्टेंस है
जी
बहुत ज्यादा है।
हाँ,
और यदि इसको हम रेगुलर यदि इसको कंज्यूम करते हैं तो इसमें फिर इस तरह का हीमोग्लोबिन कम नहीं होता है नॉर्मल इंडिविजुअल में, अनलेस एंड उसमें कोई अदर कोई डिजीज या काउज नहीं हो।
अगर इंसान एक हेल्दी प्रॉपर डाइट लेता है तो मुझे लगता है इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी ही नहीं पड़ती।
नहीं
जी। तो चलिए डॉक्टर साहब, एक गाना सुन लेते हैं, बहुत प्यारा सा एक गीत है, उसके बाद फिर हम जो हमारे लिसनर्स के सवाल हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं।
धन्यवाद
जी।
एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, बरखों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा हो।
एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नसरीन, और मेरे साथ हैं डॉक्टर अरविंद, जो कि बहुत ही खूबसूरती से हमें हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आते जा रहे हैं। एक मैसेज आया है एके टंडन, प्रोफेसर एके टंडन साहब हैं, इनका दोबारा से एक मैसेज आया है, ये पूछते हैं कि जो फ्रूट्स हैं उन्हें खाने का सही वक्त क्या होना चाहिए।
देखिए, खासकर साइट्रस फ्रूट्स रात में नहीं लेते हैं, वो अच्छा। दिन में ही लेना चाहिए, क्योंकि जब आपका लैब गैप हो जाता है ना, तो इंटेस्टिन में उसमें फिर सिक्रेशन जो एसिड का होता है, फिर आप में गैस की संभावना बढ़ सकती है। तो इसीलिए दिन में ही हम लेते हैं साइट्रस फ्रूट, खासकर बाकी फ्रूट्स कभी भी ले सकते हैं।
अच्छा।
खासकर एप्पल, पोमग्रेनेट सब ले सकते हैं।
अच्छा, जो जितने भी तमाम फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स को छोड़कर जितने भी फ्रूट्स होते हैं, उन्हें सुबह से लेकर रात तक हम खा सकते हैं।
हाँ।
लेकिन ये वाले जो
साइट्रस फ्रूट को अवॉइड करना चाहिए,
इन्हें अवॉइड करना चाहिए, रात में हमें
नहीं खाना चाहिए। हाँ।
अच्छा, ये खाना खाने के बाद क्या फ्रूट्स खाए जा सकते हैं?
हाँ, सबसे अच्छा रहता है सुबह में, जब ब्रेकफास्ट के बाद जो है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो गैप होता है उसमें ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, खासकर सलाद में भी ले सकते हैं, जब आप लंच कर रहे हैं तो उसमें भी सलाद के रूप में आप ले सकते हैं, सलाद के तौर पर भी ले सकते हैं।
अच्छा,
क्योंकि उसमें आपका कैलोरी भी बैलेंस हो जाता है।
जी। और इंसान जो है वो ओवर ईटिंग से भी बच जाता है,
ओवर ईटिंग से भी बच जाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है।
बिल्कुल। जी, तो यानी कि सुबह से रात तक कभी भी लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जो साइट्रस फूड होते हैं, फ्रूट होते हैं, इनको
इवनिंग में अवॉइड करना चाहिए, इवनिंग के बाद।
जी। और सही जो वक्त है सबसे पहले वो ब्रेकफास्ट के दौरान सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा एक और हमारे पास मैसेज आया है, ये कौन है, उग्रसेन यादव जी हैं, जो कि हमें, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा, ये पूछ रहे हैं कि जो बीपी लो हो जाता है उसे ठीक करने का क्या तरीका होता है इंस्टेंट।
बेसिकली देखिए, बीपी लो होने का कुछ, जैसे बीपी लो का कुछ ऐसा है नहीं।
जी।
हमें बीपी, किसी का बीपी जैसे 110-70 पर ही वो नॉर्मल माना जाता है, किसी का 160 पर ही।
जी।
तो 60-90 नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक, वो होना चाहिए, और ऊपर का जो है 120 से ऊपर होना चाहिए। यदि 100 से भी ऊपर बहुतों में देखा गया नॉर्मल है, तो वो उसी के लिए नॉर्मल ही है। तो इसे लो बीपी करके कुछ नहीं है। यदि बहुत ज्यादा लो हो गया तो आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं, चाय का सेवन कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्लूइड की मात्रा बढ़ानी है, खासकर फ्लूइड ज्यादा लेना होता है।
अच्छा, और जैसे इंस्टेंट, जैसे कई बार होता है इंसान को बहुत डलनेस फील होती है, वो बहुत वीक फील कर रहे होते, तो इंस्टेंट उसका क्या है? मैंने सुना है कि शायद कॉफी पीने से कुछ ठीक हो जाता है।
तो यदि लो बीपी वाले जैसे यदि हैं, तो उसमें कॉफी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें तुरंत थोड़ा बीपी तो राइज करता है,
जो फौरी तौर पर हमें आराम मिलता है।
और खासकर जैसा कि मैंने बताया कि ये राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, तो इसमें हमें बैलेंस डाइट पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, फूड के सारे कंस्टिट्यूएंट्स अवश्य होने चाहिए, जो जो फूड के कंस्टिट्यूएंट्स वो प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, तो इससे आपका बीपी भी सही रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बीमारियां आपसे दूर रहेगी।
मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये राष्ट्रीय पोषक माह चल रहा है, उस वजह से नहीं, इंसान को ता उम्र अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब इस महीने में सेहत मंद रहना जरूरी नहीं है, पूरी उम्र जब तक कि वो जिंदा रहता है उसे अपना बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम ठीक हैं तभी हम दूसरों का ख्याल रखें।
जब तक सांस से हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप सारे कार्य कर सकें और इसके लिए दूसरों का भी ख्याल रख सकें।
एक और हमारे पास सवाल है एमपी से, ये लिखते हैं, इन्हें पिछले 3 महीने से लगातार बहुत ज्यादा खांसी की प्रॉब्लम है, इन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, टीबी का, बीपी का, और सीबीसी भी करवाया है, शुगर भी करवाया है, और एचआईवी करवाया है, मलेरिया टेस्ट भी हो चुका है, पर कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो खांसी है उसकी क्या वजह हो सकती है?
सूखी खांसी यदि है तो उसमें एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट अवश्य करवाएं।
अच्छा।
कभी कभी क्या होता है कि ये इसिनोफिल के बढ़ने से आपकी सूखी खांसी और साथ साथ उसमें आस्थमा का भी कंप्लेन हो सकता है, आस्थमा का भी दिखा गया है। तो इसिनोफिल एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे ब्लड में एक सेल्स है, जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, उसको यदि संख्या बढ़ जाती है वो 450 तक नॉर्मल होता है, यदि उससे कभी किसी पेशेंट में 1000 तक भी चला जाता है, 1500 चला जाता है, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि ये जरूर आपको खांसी, सूखी खांसी और अदर प्रॉब्लम्स भी कर सकती है। तो एक इन्हें हमें ये अवश्य सलाह दूंगा कि ये स्नोफिल काउंट, एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट AEC अवश्य कराएं, तो इससे फिर पता चल सकता है।
डॉक्टर साहब, ये जो आपने टेस्ट बताया इसको एक बार स्पेल कर दें क्योंकि लोगों को पता नहीं है, जैसे इन्हें खांसी के हवाले से जो बात कर रहे हैं तो इन्हें ये
AEC कहा जा सकता है।
AEC वाला जो टेस्ट है, AEC
वाला टेस्ट सिंपल ब्लड टेस्ट है, इसको करा के देख लेते हैं और खासकर यदि सब सारा चीज नॉर्मल है तो हो सकता है स्नोफिल का काउंट बढ़ा हो, उसे इनकी सूखी खांसी है नहीं जा रही।
एक और मैसेज है हमारे पास, अनु हमसे पूछते हैं मुंबई से, ये कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उस वो लोग क्या मखानों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मखाने जो होते हैं?
हाँ हाँ, मखाना तो बहुत हेल्दी भी होता है और इसे इस्तेमाल करने ब्लड प्रेशर के मरीजों में कोई समस्या नहीं है। ब्लड प्रेशर बेसिकली जो है हमारे आर्टरी का जो है वो ख्याल भी करता, तो इसमें हमें क्या करना है कि हेल्दी डाइट और रेगुलर वॉक, योगा इज मोर इम्पोर्टेंट। रेगुलर वॉक करना बहुत आवश्यक है, खासकर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं, हमारे भारतवर्ष में भी बहुत शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं डे टू डे, तो इसको हम चेक करने के लिए हमें जो है अपने हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी, जैसा कि आपने बताया कि पोषक तत्व तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ आपको रेगुलर अपने शरीर के लिए कम से कम 3 घंटे निकालना आवश्यक है, खासकर योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज जो है, रेगुलर वॉक कम से कम 1 घंटे का अवश्य करें, 4-5 किलोमीटर, ये आपको काफी हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने में, शुगर को भी कंट्रोल रखने में और अन्य बीमारियों से भी ये बचाएगा।
जी, जैसे इन्होंने बताया, ये अनु है जो ये हमसे पूछे मखानों की जो बात है, तो क्या ब्लड प्रेशर क्या कोई भी जिन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ हाँ, कर सकते हैं, खासकर तले वाली चीजों से बचना चाहिए केवल। हाँ, और इनका लिपिड प्रोफाइल यदि नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर साहब आप हमें बता रहे हैं, तो चलिए एक गीत है बहुत प्यारा सा, वो सुन लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे।
धन्यवाद।
तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाए
अभी ब्रेक में जब ये गाना चल रहा था तो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि जिस तरह से प्रॉब्लम होती है आजकल, डॉक्टर साहब जो 20-25 साल के जो यंग लोग होते हैं उनको भी ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये हाँ, एक दिन की बात नहीं है।
हाँ, मैंने जैसा देखा है और ऑब्जर्व किया है हाँ, कि ओबेसिटी या हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी चीजें जो है हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ गई है। और जब हम बचपन से बच्चे को अब इस तरह की फूड्स हैबिट जो बदल गई है, जिसमें बैलेंस डाइट का कुछ ये रहा नहीं जाता जी, है जी। तो आप जो इस तरह के फास्ट फूड, जंक फूड ये सब लेते हैं तो इससे आपके बॉडी में तो चेंजेज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उससे बाद में शुगर भी हो जाता है और 20-25 साल में हाइपरटेंशन की भी शिकायत मिलती है और इसमें 30-35 साल में हार्ट अटैक भी की संभावना बढ़ जाती है। तो ये फ्रॉम राइट बिगनिंग हम लोगों को अपने बच्चों पर भी उनके डाइट पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। खासकर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक गिलास दूध और मैंने ये फ्रूट्स का भी सेवन करना चाहिए, उन्हें इस पर आदत डालनी होती है, फूड हैबिट बनानी होती है, अन्यथा फिर जो है क्या होता है उनका फूड हैबिट बिगड़ जाता है।
स्प्राउट्स वगैरह भी दिए जा सकते हैं,
स्प्राउट्स वगैरह देना चाहिए, इससे क्या होगा कि आप विटामिन्स मिनरल्स मेंटेन रहेगा और वो बीमारी से दूर रहेंगे।
अच्छा, बचपन से ही बच्चों को ये खाना खाने की आदत भी डलती है जब हम उन्हें ये चीज देते हैं। अच्छा, जैसे चिप्स है या मार्केट की जितनी तमाम चीजें हैं, बिस्किट वगैरह, तो ये उनकी आदत में शामिल हो जाती है,
आदत में शामिल।
वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
कभी कभी आपने देखा होगा कि जब लंच में वो कोल्ड ड्रिंक्स एंड चिप्स से अपना लंच कर लेते हैं तो ये ठीक हैबिट नहीं है। इसमें प्रॉपर जो है हमारा डाइट जो है, जो भोजन के 7 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो वो तो उनका हुआ नहीं, तो वो प्रॉपर लंच उनका हुआ नहीं, तो इससे क्या होगा कि उसमें बीमारियां आएगी और उससे खासकर हार्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड प्रेशर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें इस पर सावधानी बरतनी चाहिए।
और मुझे लगता है डॉक्टर साहब जब हम बच्चों को ये चीजें खाने के लिए बोलते हैं तो यकीनन हम खुद भी वही खाएंगे, तो ये मतलब हमारी भी सेहत
हमें पेरेंट्स पर बहुत डिपेंड करता है, पेरेंट्स को भी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अन्यथा जो है केवल बच्चे इस पर नहीं कर सकते हैं।
नहीं, बच्चों को तो खैर हम ये चीज के लिए कह ही नहीं सकते, पहले हम खुद वो हेल्दी जो हैबिट्स हैं वो शुरू करें,
पहले खुद को ठीक करना है, उसके बाद अभी बच्चों को हम कह सकते हैं। और खासकर जब खाएं तो हैंड वॉश अवश्य करें, स्वच्छता पर ध्यान दें और बैलेंस डाइट अवश्य लें, यही हमारा कहना है, और तभी हमारा जीवन ठीक रहेगा। गुड हेल्थ बहुत जरूरी है, हाँ, एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव जो बीमारियां हैं उसको हम रोक सकते हैं, बहुत सी बीमारियों को रोक सकते हैं, और प्रिवेंटिव मेजर्स हम अपने आप देख सकते हैं। हम लोग बहुत बताया कि हैंड वॉश एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि वायरल इन्फेक्शन बच सकते हैं।
बच्चों की आदत, ये बच्चों में मतलब आदत में शामिल होना चाहिए, जैसे स्कूल भी जाते हैं वो तो उन्हें बताया जाए कि आप वॉशरूम जाएं और खाना खाने से पहले, लंच करने से पहले वो अपने हैंड वॉश करें,
हैंड वॉश अवश्य करें।
जी जी,
यस।
तो ये प्रॉपर हाइजीन सबसे एक जिंदगी का अहम जो बेसिक रूल होता है वो होता है कि हाइजीन रहना इंसान,
हाइजीन, सैनिटेशन, स्वच्छता। अब स्वच्छता, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ स्वच्छता बहुत आवश्यक है, स्वच्छता रहेगा बहुत से आप बीमारियों से दूर हो सकते हैं। सब जगह स्वच्छता, जहाँ गंदे, जहाँ पानी का जमाव हो उसको भर के रखना चाहिए ताकि आप हेल्दी लाइफ लीड कर सकें, मच्छर ना पनपने पाए और कई बीमारियां से बच सकते हैं।
जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ पे मुझे लगता है बीमारियां आती नहीं है आसपास।
हाँ, बीमारियां दूर भागती हैं।
जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी कीमती जानकारी हमारे सुनने वालों को दी और यकीनन जितने भी सवाल आए थे हमारे लिसनर्स के वो सब मतलब
सभी श्रोताओं को धन्यवाद।
जी जी, बहुत बहुत आपको भी शुक्रिया कह रहे हैं हमारे सुनने वाले, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी जरूर कभी।
बहुत बहुत धन्यवाद,
अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।
शुक्रिया, शुक्रिया
जी। अब ये वक्त है समाचारों का।
दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today launched the National Animal Disease Control Program for eradicating the foot and mouth disease and brucellosis in livestock from Mathura in Uttar Pradesh. The program aims at vaccinating over 500 million livestock, including cattle, buffalo, sheep, goats and pigs, against the disease. It will be implemented for a period of 5 years till 2024 at a cost of 12,652 crore rupees. The Prime Minister also launched National Artificial Insemination Program during the event and Babugarh Sex Semen Facility. During his visit to Mathura, the Prime Minister also started Swachhata Hi Seva Program from today, emphasizing the need to put an end to single use of plastic. Earlier, Mr. Modi visited the Pandit Deendayal Upadhyay Pashu Arogya Mela. Speaking on the occasion, the Prime Minister said it is the responsibility of every citizen to inculcate the message of Mahatma Gandhi, which will be a real tribute to him on his 150th birth anniversary. He exhorted for putting an end to single use of plastic from the 2nd of next month. He appealed to everyone to join in the Swachhata Hi Seva campaign. India has said it is high time to collectively take decisive and firm action against terror groups and their abettors who threaten the fundamental human right to life. Making a statement at the United Nations Human Rights Council, UNHRC, in Geneva, Secretary East in the Ministry of External Affairs, Vijay Thakur Singh, said the world should call out those who are misusing the UNHRC platform for malicious political agendas under the garb of human rights. Without naming Pakistan, she said those who are attempting to speak on the human rights of minorities in other countries are trampling upon them at will in their own country. She said they cry victim when they are actually the perpetrators. Exercising its right to respond to Pakistan Foreign Minister's statements at the UNHRC, First Secretary of the Permanent Mission of India to the UN, Vimarsh Aryan, said India is not surprised at Pakistan's hysterical statements with false narratives aimed to politicize and polarize the forum. In Jammu and Kashmir, the restrictions under Section 144 have been eased out in most areas in Srinagar and elsewhere in Kashmir Valley. Officials said as on date, out of 105 police stations, the restrictions under Section 144 have been lifted in 92 police station areas across Kashmir Valley. They said that overall situation in Kashmir remained under control. The movement of people is being continuously monitored through high-caliber digital CCTVs in Srinagar and major towns in Kashmir. The preventive measures have also been taken in sensitive areas under old city police stations and in the city outskirts. Officials said the attendance in government offices remained satisfactory. In Jammu and Kashmir, a local militant of Lashkar-e-Tayyaba, LET, was killed in an encounter with security forces in North Kashmir's Sopore area this morning. A police official said that security forces raided Noorbag area of Sopore this morning on the basis of specific input about presence of a terrorist who was involved in an attack on fruit growers at Dangarpura, Sopore, last Friday. Police said the attack was carried out to create fear among the fruit growers not to carry out business in Sopore Fruit Mandi. Bandaru Dattatreya was sworn in as governor of Himachal Pradesh today. Himachal Pradesh High Court Judge Dharamchand Chaudhary administered the oath of office in secrecy to Bandaru Dattatreya in a ceremony at Raj Bhavan in Shimla. He succeeded Kalraj Mishra, who has been appointed the governor of Rajasthan. Onam, the most popular festival of Kerala, is being celebrated today in all its glory. Keralites across the globe are celebrating their biggest festival with great enthusiasm. It is a 10-day-long festival from Attam to Thiruvonam. President Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaya Naidu and Prime Minister Narendra Modi have greeted people on the occasion. The government of Bangladesh has ordered telecom operators to stop 3G, 4G and LTE networks in the Rohingya camp areas in Teknav and Ukhia of Cox's Bazar. And with that, we end this news bulletin.